Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
फिर अमृत का मतलब क्या है? थोड़ा लंबा खींच दिया है। ये सारी दवाएं आपको लंबी तो खींचती हैं, आपको मरने नहीं देती, रोगादि से आपका बचाव कर लेती हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने आंख की इस रोशनी को खींच सकते हैं। मैं 10 साल और चलेगी आंख, आप इन घुटनों को यदि सावधान रहे तो थोड़ा बचा लेंगे। आपको डॉक्टर बोलता है कि बहुत सीढ़ियां ज्यादा नहीं चढ़ना, क्यों? आपके कभी घुटने खराब नहीं होंगे, ऐसा ऐसा नहीं है। आपकी उम्र भले ही 100 साल की हो, आपके घुटने की उम्र 50 साल की है, आपके घुटने की उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं है। नारायण ये अपरिहार्य है, और इस अपरिहार्य सत्य को आपने जान लिया, इस परिवर्तन के सत्य को जान लिया, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपको मालूम है ये परिवर्तन आत्मज्ञान के दृष्टि से कोई शोक नहीं है, और अनात्मा के दृष्टि से भी कोई शोक नहीं है। ज्ञानी पुरुष सत्य को जान लेता है, और सत्य को जानने के बाद उसको वैसे के वैसे स्वीकार करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर केवल इतना ही है, बाहर के किसी भी वस्तु का परिवर्तन नहीं है, केवल सत्य को जानना है। ज्ञानी जानता है और अज्ञानी नहीं जानता, केवल अंतर इतना। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभव एन अनुपश्यति। जो स्वप्न को और जागृति को, स्वप्न और जागृति के पदार्थों को भी जानता है, वो आदमी न सोचती। हम जान लेते हैं स्वप्न में है, अब आदमी को तो क्या कहा जाए, स्वप्न से भी आदमी परेशान रहता है कि हमने ऐसा स्वप्न क्यों देखा। लेकिन स्वप्न तो स्वप्न है, आपको मालूम है स्वप्न सत्य नहीं है। स्वप्न में जो भी चीजें दिखाई देती हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं वहां देश नहीं होता है, देश की प्रतीति होती है। आप सो रहे हैं, बहुत छोटा सा कमरा है, लेकिन स्वप्न देख रहे हैं। आपको बहुत बड़ा कमरा मालूम पड़ रहा है, वो जहां आप सो रहे हैं जगह छोटी है, लेकिन स्वप्न में देख रहे हैं बहुत बड़ा कमरा है, बहुत विस्तारपूर्वक स्थान है। आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, अब इससे बड़ा तो कोई स्थान नहीं होगा, छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह में हम बहुत लंबी चौड़ी जगह देख रहे हैं, और वहां काल बहुत छोटा होता है। स्वप्न का काल बहुत छोटा, आप सो रहे हैं, एक क्षण आपको नींद आए और उसी समय आपने बहुत लंबा स्वप्न देखा। आपने देखा कि उतने ही समय में आप हरिद्वार होकर के वापस भी आ गए, एक क्षण में आपने 4 दिन का स्वप्न कैसे देखा, वर्षों का स्वप्न देख लेता है आदमी, वर्षों का। देश के अभाव में देश की प्रतीति, काल के अभाव में काल की प्रतीति, समय के अभाव में समय की प्रतीति, और वहां वस्तुएं होती नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं होता। आप अकेले सो रहे हैं, दरवाजा बंद है, और स्वप्न में बहुत सारी चीजों के आप दर्शन कर रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं, वस्तु के अभाव में वस्तु की प्रतीति, और इसी को तो मिथ्या बोलते हैं। आप जिसको मिथ्या मिथ्या बोलते ना, इसी को मिथ्या बोलते हैं। प्रतिपन्नोपाधो त्रैकाल निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, देश के अभाव में देश का मालूम होना, काल के अभाव में काल का मालूम होना, वस्तु के अभाव में वस्तु का मालूम होना, यही मिथ्यात्व है। और स्वप्न में सर्वसिद्ध है, प्रत्येक आदमी को मालूम है कि स्वप्न में जो चीजें दिखाई देती हैं वो मिथ्या है। ये मिथ्या जो शब्द है ना, ये नाश के अर्थ में नहीं है, मिथ्या शब्द परिवर्तन के अर्थ में नहीं है। ये वेदांत का बहुत तकनीकी शब्द है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन माने बदलना, परिवर्तन माने चेंज। जैसे आप बच्चे थे, जवान हो गए, जवान है बूढ़े हो गए, ये परिवर्तन है। और ये शरीर नष्ट हो गया, जैसे शरीर छूटा, मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसको आप सड़ने देते हैं, गलने देते हैं, मर गया ये, अब नष्ट हो गया, जला दिया आपने, ये नाश है। जैसे घड़ा बनाया और उसको आपने फोड़ दिया, ये नाश है। इसलिए परिवर्तन वस्तु अलग है, नाश अलग है, और ये मिथ्या जो है ना, ये अलग है। तीसरी चीज है बाध। ये बाध शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये शब्द समझना भी बहुत जरूरी है। परिवर्तन, नाश और बाध, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। बाध शब्द का अर्थ होता है कि जो मालूम पड़े, दिखाई दे, लेकिन हमारे मन में ये निश्चय हो कि ये है ही नहीं है। आपको वस्तु दिखाई दे, लेकिन आपके मन में निश्चय हो ये वस्तु है ही नहीं है, इस निश्चय का नाम है बाध। त्रैकालिक अत्यंता भाव का जो निश्चय है उसको बाध बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वेदांत का। आप वेदांत की प्रक्रियाओं को जब श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये शब्द आपको अक्सर सुनने को मिलता है। वस्तु दिखाई दे और आपके मन में निश्चय हो कि ये नहीं है, आपने देखा हो और आपको मालूम हो कि वो नहीं थी, केवल हमको दिखाई दे रही थी, इसको बात बोलते हैं। जैसे उदाहरण में, आप बहुत भूखे थे, आप सो गए और सोते समय आपने स्वप्न देखा, 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने हैं और आप भरपेट भोजन कर चुके हैं स्वप्न में, और जैसे ही भोजन पूरा हुआ हाथ धोने को था और उसी समय आपके आदमी ने आवाज लगा दी भोजन के लिए और आप जग गए, तो आप भोजन करोगे कि नहीं? आपने अभी स्वप्न में बहुत स्वादिष्ट भोजन किया है, 56 प्रकार के व्यंजन आरोगे हैं, तो आप अब क्या कहोगे? क्या हम भोजन नहीं करेंगे? हमने तो अभी अभी भोजन किया है, 56 प्रकार के व्यंजन खाए, लेकिन आप भोजन करोगे क्योंकि आपको मालूम है कि वो भोजन करते हुए मालूम पड़ रहे थे लेकिन भोजन नहीं कर रहे थे। माने प्रत्यक्ष आपने देखा और उसके बाद भी आपको मालूम है कि वो चीज है नहीं, इसी का नाम बाध है, इसी का नाम बाध है। बाध माने वस्तु का मिटना नहीं है, बाध माने वस्तु में जो सत्यत्व की प्रतीति है। बाध माने उस वस्तु में वस्तु के प्रतीति में जो सत्यत्व की प्रतीति हो रही थी वो सत्यत्व मिट जाना, इसी का नाम बाध है। ज्ञानी में और अज्ञानी में यही तो अंतर है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं आपको मिटाना कुछ नहीं है, आपको मिटाना कुछ भी नहीं है, केवल प्रतीति में जो सत्यत्व है ना वो मिटाना है। ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद क्या होता है? ज्ञान होने के बाद जो प्रपंच में सत्यत्व है ना वो मिट जाता है। हमें प्रपंच मालूम पड़ रहा था, ये सत्य है, केवल सत्य मालूम पड़ रहा था। एक मैं छोटा सा दृष्टांत आपको बता देता हूं। जैसे कोई एक व्यक्ति है रास्ते से गुजर रहा था और उसको रास्ते में एक सोने का कड़ा मिला, बहुत अच्छा लगा, उठाया आपने, घर ले गए, रात भर नींद नहीं आई, आप सोच रहे थे बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आप बहुत टेंशन में आए, आप दिन भर सोच रहे थे, परेशान थे, लेकिन संध्या के समय आप गए, स्वर्णकार को दिखाया, आपको मालूम पड़ा कि ये सोना नहीं है, ये तो धातु भी कीमती नहीं है, बहुत ये रद्दी चीज है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या बदला? आप जैसे के वैसे हैं, और जो चीज आपको मिली रास्ते में वो भी जैसे के वैसे हैं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं, तो बदला क्या? आपकी दृष्टि बदल गई, उसके प्रति आपके मन में सत्यत्व की बुद्धि थी, ये असली चीज है। और जब आपने असली माना, आपकी दृष्टि में असलीता थी, और इसीलिए आपके अंदर कितने बदलाव आए, रात की नींद चली गई, दिन का चैन उसने छीना, उस दृष्टि ने, वस्तु ने नहीं छीना, उस दृष्टि ने छीना। और जैसे ही आपकी दृष्टि वो मिटी, और वैसे आपके अंदर बदलाव आ गया, और आश्चर्य की बात, उसके बाद फिर आप चैन से सो जाएंगे, और उसको उठा करके कहीं भी धर दे, आप अपने घर में भी लाके रख दे, लेकिन अब वो वस्तु आपकी नींद छीनेगी कि नहीं, आपकी चैन छीनेगी कि नहीं? यही तो है ततो न विजुगुप्सते। बोध होने के बाद ज्ञानी शोक नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम हो गया है, सत्य का पता चल गया है, और इसी का नाम बाध है। बाध है जिसको हम बाध कहते हैं, वो नाश नहीं है, जिसको हम बाध कहते हैं वो परिवर्तन भी नहीं है, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे आपके पास सोने का कड़ा रखा है, आपने उसको परिवर्तन कर दिया, उसको बना दूसरा बना दिया, या उसको मिटा दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन वैसा भी नहीं, आपके घर में वो पड़ा हुआ है, सोने का कड़ा आपको जो मिला वो आपके घर में पड़ा है, अपने शोरूम में रखा है उसको। लेकिन उसके प्रति जो आपके मन में सत्यत्व बुद्धि थी वो खत्म हो गई। अब आपको मालूम है कि ये सोने की तरह दिख रही है लेकिन सोना नहीं है, सोने की तरह दिख रही है लेकिन सोना नहीं है, यही बाध है। और ये बाध जो है ना आपकी दृष्टि है, बाध दृष्टि है, सृष्टि नहीं है। बाद माने हमारे दृष्टि का परिवर्तन है, जो सत्यत्व की दृष्टि थी अब वो सत्यत्व की दृष्टि मिटी है, बाहर कुछ भी बदलता नहीं है, केवल हमारे दृष्टि में बदलाव आता है। इसलिए स्वप्न से लेके जागृति तक, यहां कहते जो जानता है, स्वप्नांतम जागृतांतम चोभव एन अनुपश्यति मत्वा धीरो न सोचती, आपने जाना स्वप्ने के पदार्थों को अच्छी प्रकार से जाना, हम जानते तो नहीं है, हम उस पर विचार करते भी नहीं। आप बहुत विचार करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, शास्त्र सम्मत आप विचार करेंगे आपको मालूम पड़ेगा। यहां शोक का कोई अवसर नहीं है, किसके प्रति शोक करना, ये स्वप्न के पदार्थ हैं। और जिसने जागृति को भी जाना, मैंने आपको अभी अभी कहा था भगवान की उक्ति अपरिहार्य थे न तुम शोचितुम अर्हसि, भगवान कहते जो अपरिहार्य हैं, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, जिसको आप पैदा नहीं कर सकते, उसके बारे में क्या शोक करना है। और बात तो सत्य है, शोक करने की जो चीजें हैं आप उसके ऊपर दृष्टि डालिए, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के पदार्थ, या आपका ये सबसे कीमती महत्वपूर्ण ये शरीर है, इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, हम कौन सी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। परिस्थितियां बदल रही हैं, ये बात अलग है, और हमें ऐसा लगता भी है कि हमारे कारण बदल रही हैं। आदमी को लगता है कि बहुत सारी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण है, नियंत्रण है, ये बात सत्य है, लेकिन वो नियंत्रण हमारे कारण है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कारण ही सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, जितनी बात सत्य है, आप हैं और ये सारी चीजें व्यवस्थित हैं, ये भी सत्य है, लेकिन आपके कारण है, यही तो भ्रम है। और सबसे बड़ा भ्रम है ये, आदमी को ये भी लगता है मेरे कारण व्यवस्थित है, मेरे जाने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें वैसे ही चलती हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे के वैसे चलती हैं। लेकिन आदमी सोचता है, और इसी सोच का ही तो नाम शोक है, और क्या है। जब आप यहां श्रवण करते न सोचती, माने वो शोक नहीं करता है, तो शोक का मतलब क्या है, शोक का मतलब यही तो है, हम शाश्वत सत्य नियमों को यदि जान ले, बहुत ज्यादा आत्मज्ञान तक जाने की भी जरूरत नहीं है, केवल हम व्यवहार के दर्शन को जान ले, व्यवहार के दर्शन को, व्यवहार के अकार्य सत्य को पहचाने, तो हमारा शोक विदा होना शुरू हो जाएगा, विदा होना शुरू हो जाएगा, हम कुछ भी बदल नहीं सकते। बदलने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन ये सोचे ही नहीं कि हमारे इस प्रयत्न से कुछ बदलेगा, और बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदल रहा है। अच्छा, आप कितने सालों से बदलना चाह रहे हैं, आप किसी भी आदमी को अपने घर में, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, अपने मित्रों में, आप लोगों को बदलना चाहते हैं, कितने दिनों से बदलना चाहते हैं, सारा जीवन गुजर गया बदलने के लिए, बदलने की कोशिश में, लेकिन कितने लोगों को बदला। मेरे को लगता है कि यहां तो सारे सारे सभी को बदलने में लगे हुए हैं। सच देखा जाए तो आप अपने परिवार में देखना, बाप बेटे को बदलने में लगा है, और बेटा बाप को, पिताजी बोलते बेटा तू ठीक नहीं कर रहा, और बेटा बोलता पिताजी तुम ठीक नहीं कर रहे हो, पत्नी सोचती कि तुम्हारे में बदलाव आना चाहिए, और पति बोलता है तुम्हारा भी बदलाव आना चाहिए। ये सारी चीजें ये हमारे आसपास घट रही हैं, हम बदलना चाहते हैं, और वो बहुत वर्षों से बदलना चाहते हैं, लेकिन चीजें बदल नहीं रही हैं। लेकिन हमें कब मालूम पड़ेगा कि ये चीजें बदलने वाली नहीं है, आदमी को यही तो भ्रम है, यही तो मोह, इसी को तो मोह बोलते हैं। आदमी मरते समय भी बदलने की कोशिश करता है, वो स्वयं बदल रहा है, जो दूसरे को तो बदल नहीं पाया, हम अपने आप को भी कहां बदल पाते हैं। और हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। भगवान ने कहा अपरिहार हार्यर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को टालना चाहते थे कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण अपने यादवी अपने वंशों के उस महायुद्ध को टालने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे, महाभारत के युद्ध को टालने की कोशिश की, लेकिन टला नहीं? टला, कोशिश तो की। लेकिन कृष्ण की एक बहुत सुंदर बात है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते कोशिश करो, होता है तो ठीक और नहीं होता है तो बहुत ठीक। कृष्ण ने 700 श्लोकों में अर्जुन को ज्ञान का उपदेश किया, ये भगवान की बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। 700 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया और बहुत परिश्रम करके। कई बार तो भगवान ने गाली भी दी बीच में, मूड 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 बोला, बहुत श्लोकों में बोला और बहुत मन से कोशिश की, और अंत में भगवान ने एक बहुत सुंदर बात बोली। भगवान ने कहा कि मैंने तुमको गीताजी बता दी 700 श्लोकों में, समझ में आई? और कुछ सुनना चाहते हो? भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा करो। ये बात भगवान की बहुत अच्छी है, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसा करो। भगवान मुक्त हो गए, हम मुक्त नहीं हो पाते। भगवान जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, उपदेश करने से मुक्त हो गए। हम उपदेश करते हैं और उपदेश करके ये आशा रखते हैं कि सामने वाला हमारी बात मान ले, और उसको मानने से हमारे अहम का पोषण होता है। हमें सुख उसके बदलाव से नहीं है, हमें सुख हमारी बात के मानने से है। कई बार आदमी बोलता है कि देखो बड़ा नालायक, हमने सुनाया लेकिन माना नहीं, और पड़ोस ने सुनाया और वो मान गए, आदमी दुखी होता है। आदमी को लगता है कि मेरे कहने से इन्होंने किया नहीं और वही बात पड़ोस ने बोली तो इसने कर दिया, तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन आदमी में बदलाव में रस नहीं है, केवल अपनी बात मनवाने में रस है, क्योंकि उसमें अहम का पोषण है। हम सोचते हैं ये हमारी बात माने, हमारी बात माने, लेकिन कृष्ण इस व्यामोह में नहीं रहते। कृष्ण ने उपदेश किया और उपदेश करने के बाद कृष्ण मुक्त हो गए। उन्होंने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने तुमको कहा युद्ध करो, निष्काम भाव से आत्मा में स्थित होकर युद्ध करो, और युद्ध करो ठीक है और नहीं करो तो भी ठीक। यथेच्छसि का अर्थ यही है, तुम करोगे तो भी ठीक है और तुम नहीं करोगे तो भी ठीक है, मेरा कर्तव्य मैंने पूरा कर लिया, आप कोई शिकायत नहीं है। और ये कृष्ण की बात हमें याद रखना चाहिए, हमें पग पग पर याद रखना चाहिए। आप समझाने की कोशिश करो, और समझता है तो ठीक है और नहीं समझता है तो वो भी ठीक है। आप क्या करोगे? कोई उपाय नहीं है, या तो आप अपना सिर फोड़ लो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, कोई उपाय है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी सामने वाला समझेगा? इसलिए जागृत के इन व्यावहारिक पदार्थों को और स्वप्न के पदार्थों को जान लेता है जो व्यक्ति यथातथ्य सत्य रूप में, ततो न विजुगुप्सते, उसके जीवन में शोक नहीं रहते, उसके जीवन के मोह विदा होना शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में दिव्य विवेक का आना शुरू हो जाता है। महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। आचार्य यम कहते हैं कि जैसे इस व्यवहार के पदार्थों को जान लेता है, उसी प्रकार धीरे धीरे आत्मिक सत्ता जो परमात्मा चैतन्य कूटस्थ उसको जानकर, और कैसे जानकर? महांतम विभुम आत्मानम मत्वा, मैं अपने आप को जितना छोटा समझता हूं उतना छोटा नहीं हूं। अनोरणियान महतो मही, मैं आत्मा हूं। आत्मा का अर्थ यही है, आत्म वेदम सर्वम। आत्मा का अर्थ शरीर में नहीं, शरीर के बाहर भी व्यापक सत्ता जो ब्रह्म सत्ता है उसके साथ एक रूप होकर के जो अनुभव है यही महांतम विभुम आत्मान मत्वा। जान लिया कि मैं आत्मा हूं, व्यापक हूं, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। ये क्रिया भ्रम है, मैं अक्रिय हूं। ये क्रिया मालूम पड़ रही है लेकिन क्रिया का आधार अधिष्ठान मैं हूं, क्रिया मैं नहीं हूं, मेरे में कोई क्रिया नहीं हुई। जैसे स्वप्न, स्वप्न में बहुत सारी चीजें देखते लेकिन हमारे में होती नहीं है। ये सारी चीजें दिखाई दे रही लेकिन मेरी आत्मसत्ता में नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति जानता है, आचार्य यम कहते हैं धीरो मत्वा न सोचति, इसको जो मानता है वो कभी शोक नहीं करता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।